ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
बोले यम के दूत जैसे उनके निकट आए उन्हें लेने के लिए, दो देवों से बड़ा डर लगता है नारायण। यम का नाम सुनते भी बड़ा भय लगता है और शनि का नाम सुनते भी बड़ा भय लगता है। जीवित जिंदे जी सताने वाले डराने वाले देवता कौन हैं? बोले शनि देव हैं। शनि के नाम पर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। अच्छा, शनि और दूसरा मरणोत्तर, मरने के बाद यम। यम कहते ही बड़ा हमें डर लगता है। जानते हैं ये दोनों के देवता कौन है? ये दोनों है सूर्य पुत्र। सूर्य के पुत्र का नाम यमराज है और सूर्य के पुत्र का नाम शनि है। एक जीते जी डराता है, एक मरने के बाद डराता है। एक मरने के बाद भय दे और एक जीते जी भय दे। इन दोनों के भय से, यम के भय से और शनि के भय से बचने के लिए हमें कौन से देव की शरण लेनी चाहिए? बोले इनके जो पिता हैं वो कौन है? भगवान सूर्य देव, भगवान सूर्य नारायण, अर्थात सूर्य देव बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि के देव हैं सूर्य। और सूर्य स्वयं कौन है? बोले भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव का ही नाम है, इसीलिए भगवान शिव का अभिषेक करते समय और कुछ नहीं बोल सकते हो तो केवल इतना तो बोल लो, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिश्च राहु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इतना कहकर केवल एक लोटा भगवान शंकर में जल ही चढ़ा दो। अलग अलग नौ ग्रह को कहाँ कहाँ पूजते रहोगे, किस किस की सेवा करते रहोगे? इसलिए कुछ नहीं करो, केवल एक लोटा जल लेकर के भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हुए, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर चढ़ाते हैं अथवा ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाते हो, तो कम से कम इतना कर दो कि इन नौ ग्रहों का नाम लेकर एक लोटा जल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दोगे तो क्योंकि भगवान शिव से बढ़कर के और कोई देव नहीं है। भगवान शंकर के आगे पीछे सर्वे ग्रह, ये ग्रह ऐसे हैं ना, एक बार शनि देव ने सोचा कि जाकर मैं शंकर जी को के ऊपर अपना प्रभाव दिखाऊंगा। सब देवों पर शनि ने अपना प्रभाव डाला, सबको दुखी कर दिया। यहां तक कि शनि ने सूर्य और चंद्र को भी नहीं छोड़ा, स्वयं अपने पिता सूर्य को भी नहीं छोड़ा, जिसके कारण सूर्य में भी ग्रहण आता है। तो सोचा चलो शंकर जी के ऊपर भी मैं अपना प्रभाव दिखाऊं। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव को तो मालूम था कि शनि आने वाले हैं। तो शंकर जी के मन में विचार हुआ और भगवान शिव के अंदर तप करने की इच्छा जागी और उन्होंने नंदीश्वर को कहा, तुम थोड़ा जाओ जंगल में घास वास चरो। नंदीश्वर को छोड़ दिया और आगे बढ़े भगवान शिव। तो जो मस्तक में चंद्रमा थे उनको भी कहा कि जाकर थोड़ी दिन समुद्र में रह करके आओ, तुम्हारे पिता के पास समुद्र के पुत्र हैं, कहा जाकर समुद्र में रहकर आओ, मिलकर आओ। उनको उनके पिता के पास मिल दिया और आगे बढ़े। शेष जी को कहा कि तुम भी जाकर थोड़ा आराम करो, शेष जी का भी त्याग कर दिया। पंचतरणी में गए तो पंच तत्वों को छोड़ दिया और संगम में गए गंगा आदि नदियों को छोड़ दिया और भगवान शिव भगवती शिवा को हिमालय के पास भेज करके बिल्कुल अकेले होकर शंकर जी बैठ गए ध्यानस्थ। तो इतने में शनि का आने का समय हुआ और आकर सामने खड़े हो गए। तो भगवान शिव ने कहा, तुम आए हो? हाँ महाराज, मैं आ गया हूँ। तो मैं आ गया हूँ तो आए हो, तो जिसके लिए आए हो वो करो। कहा, प्रभु जो मैं आकर के करता वो तो आपने पहले अपने आप ही कर दिया, इसलिए आपके चरणों में खोटी खोटी प्रणाम है। मैं आकर ज्यादा से ज्यादा क्या करता? कोई भी ग्रह आएगा, शनि आएगा तो क्या करेगा? प्रियजनों को अलग कर देगा। जिनको तुम्हें हटाना था वो तो मैं पहले हटा चुका। शनि देव जैसे आए थे वैसे लौट गए। तो जो ऐसे भगवान शिव की शरण में जाते हैं उनको कोई भी ग्रह दशा पीड़ित नहीं कर सकती है। ये सोम शनि शनिश्चर जो आदि ग्रहों से हम लोग दुखी रहते हैं, ये तभी तक दुखी हैं जब तक हमने शिव की शरण नहीं ली है। अर्थात जो जन भगवान की शरण में चले गए हैं, शिवाश्रित हो गए हैं, शिव में भरोसा कर लिया है, शिव में विश्वास कर लिया है, विश्वास पर जिसने विश्वास कर लिया है, अपनी मति को उनके चरणों में दृढ़ कर ली है, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है, और इस भरोसे के साथ जिसने भगवान शिव की चरण शरण पकड़ी है, उन्हें कभी कोई ग्रह दशा व्यथित नहीं कर सकती है, पीड़ित नहीं कर सकती है, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए भगवान शिव की उपासना करते समय जरूर अवश्य में सभी ग्रहों को लेकर जल उन्हीं को चढ़ा देना चाहिए जिसमें सब शांत होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि भगवान शिव देवादि देव हैं और इनकी शरण जाने से सर्व दुखों को हरने वाले, हर हर प्रहर प्रहर कहकर ये डाकू लोग दिन रात हर हर प्रहर प्रहर यही शब्द बोला करते थे। आगे का शब्द प्रहर सब प्रहर शब्द निकल गया, दोनों अक्षरों के पीछे हर हर शब्द है और इस हर हर शब्द से ही भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए। यम दूत जब लेने के लिए आए तो बोले वहां पर भगवान शिव के पार्षद पहुंच गए, शिव के गण पहुंच गए। उन्होंने यम दूतों को कहा ठहरो ठहरो, उन्हें रोक दिया। कहा महाराज ये तो आपके ले जाने के लायक नहीं है, इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, लूटपाट किया है। शिव पार्षदों ने कहा, शिव गणों ने कहा, नहीं नहीं, इन्होंने तो दिन रात हमारे स्वामी का भजन किया है। बोले भजन कैसे किया है? ये तो हर हर कहते रहे, इनका मतलब था हर लो छीन लो छीन लो, प्रहर प्रहर इन पर प्रहार करो, इन्हें मार लो इन्हें मार लो, ये इनका आश्रय था। कहा नहीं नहीं, दोनों शब्दों के पीछे हर हर था, ये तो हर हर की शरण में गए, अर्थात भगवान शंकर की शरण में गए हैं, इसलिए इन्हें आप नहीं ले जा सकते हैं। ये कहकर यम दूतों को हटा करके शिव पार्षद शिव गण उन्हें शिव लोक पहुंचा दिए और शिव लोक में जाकर के जहां जाकर उन्हें परम गति परम कल्याण की प्राप्ति हो गई। तो ये कथा शिव पुराण में आती है। भगवान शिव जो अनजाने से भगवान शिव का नाम ले लेते हैं उनकी ये गति उन्हें प्राप्त होती है। जो श्रद्धा विश्वास प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की शिव की महिमा को समझ करके जो भगवान के शिव के नाम का यश का कीर्तन करेंगे, उनके यश कीर्त का कीर्तन करते हैं अर्थात यश को गाते हैं, भगवान शिव के गुण को पहचान कर उनके गुणों का गान करते हैं, जिनके यश को सुन करके उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उन भक्तों पर कभी कोई विपदा नहीं आ सकती है, कोई उन्हें वो सर्वापत्ति से छुड़ाने वाले भगवान शिव हैं। आपत्ति तभी तक है, विपत्ति तभी तक है जब तक भगवान का नाम हमसे विस्मृत है, हम भूले हुए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने अपने मन को शांत करके कर लिया है और समग्र इंद्रियों को का निरोध कर लिया है, इंद्रिय निग्रह को प्राप्त करके अपना चित शिवार्पित किया है, शिव के चरणों में लगाया है और शिव की भावना को अपने हृदय में भर लिया है, नेत्र से भगवान शिव की इस लीला महिमा को जगत को देखकर, इसका सार रूप शिव को पहचान कर आनंद से जिसने वो नेत्रों से अपने हृदय में शिव भावना परिपूर्ण कर ली है, ऐसे निष्ठावान भक्त अपने चित्त की गति को निरंतर भगवान के चरणों में लगाए हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के नाम को शिव शिव कहते हुए, शिव शिव कहते कहते, शिव शिव रटते रटते, शिव शिव भजते भजते, वो शिव गति को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात परम कल्याण की गति को प्राप्त कर जाते हैं, वो संसार के नाम भेद को लेकर भ्रमित नहीं होते हैं। शिव कहा तो बहुत से लोग केवल नाम के लिए कट्टरवादी हो जाते हैं। नारायण, एक बात ध्यान रखना, किसी एक नाम को, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई भी एक नाम जब तो हमेशा एक ही नाम का करना चाहिए इसमें, क्योंकि जपाकार वृत्ति बनने के लिए बार बार, परंतु ये समझकर करना चाहिए जैसे स्वर्ण एक है, स्वर्ण के बने हुए आभूषण अनेक हैं, आभूषणों के रूप में, तत्व के रूप में स्वर्ण को पहचान कर आप सभी आभूषणों को पहचानते हैं, उसी तरह से अपने इष्ट अपने आराध्य को सर्व रूप में देखकर ये भेद नहीं रखना चाहिए। बहुत से वैष्णव इस बात का बड़ा भेद करते हैं कि शिव तो बड़े ही तामस देव हैं, इसलिए उनसे भेद करते हैं, उनका नाम लेना भी स्वीकार नहीं करते हैं, या अथवा ऐसा हम किसी नाम ले लेंगे तो अन्याश्रय हो जाएगा, यदि हम किसी का शिव के का नाम ले लेंगे अन्याश्रय हो जाएगा, उनका गुण सुन लेंगे अन्याश्रय हो जाएगा। बात ये नहीं है नारायण, बात तो ये है कि हमें भगवान शिव का अर्थात जो नाम स्मरण करते हैं उसी को सर्व रूपों में देखते हुए, तू ही कृष्ण है, तू ही राम है, तू ही नारायण है, तू ही सूर्य है, तू ही गणपति है, ऐसा समझ करके उस नाम को सर्व भाव में सर्वात्म भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए। नारायण, सर्वात्म भाव की एक भावना ऐसी अपने निष्ठ के प्रति होनी चाहिए। महाराज उपमन्यु की कथा शिव पुराण में भी आती है और महाभारत में ये कथा बहुत विस्तार से बताई गई है। उपमन्यु नामक भगवान शिव के एक भक्त हुए, भगवान शिव की ये नित्य प्रति उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। महाराज उपमन्यु तप कर रहे थे, इनकी तपस्या को करते हुए देखकर इंद्र के मन में डाह पैदा हुई। इंद्र सोचने लगे, जब जब इस पृथ्वी पर कोई तपस्वी तप करता है तो इंद्र के मन को पीड़ा पहुंचती है, उसे बड़ी ईर्ष्या होती है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि देवताओं के अंदर भी ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, इसलिए देवता भी ईर्ष्या और द्वेष से बचे हुए नहीं है, तब सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या। और जिसने इस ईर्ष्या और द्वेष के ऊपर, इस राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, एक बात गंभीरता से समझिएगा, तमाम अध्यात्म विद्या का अर्थ क्या है, जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, उपनिषद विद्या कहते हैं, आत्म विद्या कहते हैं, इस विद्या का मतलब क्या है, इस अध्यात्म विद्या का अर्थ है कि हमारे जीवन से राग और द्वेष की निवृत्ति हो जाए। बुद्धि में राग और द्वेष न रह जाए, बुद्धि से राग द्वेष को हम निकाल दें और बुद्धि को निष्पक्ष कर लें। जिस काल में बुद्धि निष्पक्ष हो जाएगी, उस काल में आप क्या होंगे, उस काल में आप केवल मनुष्य नहीं होंगे, मनुष्य से ऊपर देव नहीं होंगे, अर्थात उस समत्व बुद्धि को प्राप्त करके आप स्वयं भगवत स्वरूप होंगे, परमात्म स्वरूप होंगे, अर्थात आज आपके निज स्वरूप में आपकी स्थिति बनेगी। जब तक बुद्धि में लेश मात्र भी राग और द्वेष शेष रह जाएगा, तब तक हमारा जन्म मृत्यादि का ये जो बंधन है ये समाप्त नहीं होगा नारायण, क्योंकि राग का काम है पकड़ना और द्वेष का काम है हटाना, दूर करना। तब तक हम पकड़ते रहेंगे, राग से पकड़कर हम समीप लाना चाहते हैं, द्वेष से हम उसे दूर फेंकना चाहते हैं। फेंकना, पकड़ना, उठाना और गिराना, ये क्रम हमारा चलता रहेगा। और इस कार्य को करने के लिए हमें तब तक जन्म लेने के लिए हमारे सामने व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि बुद्धि को निष्पक्ष कर लो। बुद्धि दोनों से निष्पक्ष हो, आखिर हो कैसे? इस बुद्धि में ऐसी स्थिरता कैसे आए? बुद्धि को स्थिर करने के लिए इस आत्मविद्या को धीरे धीरे सीख, और इस आत्मविद्या के जो स्वामी हैं, ज्ञानी के जो देव हैं, विशुद्ध ज्ञान देहाय अर्थात भगवान शिव, इस तत्व के परम देव हैं, बोले भगवान शिव के शरण में जाकर, भगवान शिव में मन को लगाकर, दिन रात जिज्ञासा से शिव शिव रटकर भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना कर, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान देही। ये जो भिक्षा है ज्ञान वैराग्य की, वो तो उस मां शक्ति के शरण में प्राप्त होगी, जिस शक्ति से भगवान शिव ने ये विद्या प्राप्त की। नारायण महाराज उपमन्यु तप कर रहे हैं, इंद्र को द्वेष हो गया है, कहीं ये मेरा सिंहासन न छीन ले, मुझसे कहीं आगे न बढ़ जाए। और ये तो राजा थे, भगवान नारायण भी जब हिमालय में तप करते हैं तब भी इंद्र को द्वेष हो जाता है। जब जब जो कोई भी, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो असुर हो, जो कोई भी हो, जब जब वो तप करता है तब तब उसे देखकर इंद्र के मन में द्वेष होने लगता है कि कहीं ये तप से मेरा राज्य छीन न ले। इंद्र को भय हुआ और इस भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदला, और वेश बदल करके जाकर इंद्र महाराज उपमन्यु के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के सामने खड़े हुए और कहा कि राजन बरम ब्रूई, और वरदान मांगने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि आप जो चाहें वो मेरे से वरदान मांग लें, परंतु महाराज उपमन्यु की निष्ठा थी, उन्हें तो भगवान शिव के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं था। इंद्रदेव ने बहुत को विचलित नहीं हुए, महाराज तब करते रहे। अंतों उनकी तपस्या और उनकी निष्ठा को देखकर जब उनके समक्ष इंद्र ने आकर के कहा कि आप मेरे से जो चाहे राज्य वो प्राप्त कर लें, तो महाराज उपमन्यु उनकी ओर देखकर कहते हैं, अपि कीट पतंगो वा भवे शंकराज्ञा, मेरे प्रभु शिव की आज्ञा से मुझे कीड़ा बनना पड़े, पतंगा बनना पड़े, बार बार जन्मना मरना पड़े, वो सब कुछ मुझे स्वीकार है। जो भी बनाए वो बनने को मैं तैयार हूँ, जो कराए वो करने को मैं तैयार हूँ, जो मेरे शिव की मेरे लिए आज्ञा हो। मुझे शिवाज्ञा से, मेरी शिव की आज्ञा से मुझे जो भी करने को कहा जाए, जो भी बनने को कहा जाए, वो सब मुझे स्वीकार है। परंतु ये इंद्र, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे तीन लोक का अधिपत्य और आप इंद्र लोग भी, आप मुझे का सुख भी, वैभव भी मुझे देना चाहते हैं, तो मुझे आपके द्वारा मिले दिए हुए इस राज्य आदि से तनिक भी कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं किसी अन्य से कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु शिव से चाहता हूँ। शिव के प्रति इस प्रकार की निष्ठा को देखकर तत्क्षण ही भगवान शिव वहाँ साक्षात रूप से महाराज उपमन्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी निष्ठा ये होती है। कैसी निष्ठा? बोले महाराज उपमन्यु जैसी निष्ठा, मुझे मेरे इष्ट की आज्ञा अनुसार मुझे जो कुछ बनना पड़े वो मुझे स्वीकार है, जो वो मुझसे कराए वो मैं करने को तैयार हूँ। भक्त से पूछा गया, तुम क्या करोगे? जो भगवान कराएंगे। और कहाँ जाओगे? जहाँ मेरे भगवान ले जाएंगे। क्या देखोगे? जो हमारे भगवान दिखाएंगे। क्या सुनोगे? जो मेरे प्रभु मुझे सुना, यद्यत कर्म करोगे। मैं वो सब कुछ करूंगा। भक्त की कहीं किसी बात से नाई तो है ही नहीं, निराग्रही, उसका कोई अपना आग्रह नहीं है, उसकी कोई ऐसा होना ही चाहिए इस प्रकार का कोई उसके अंदर आग्रह नहीं है, अर्थात ऐसी कोई अकल नहीं है उसमें। इतना लचीलापन है, इतनी विनम्रता है। भक्त हमेशा विनम्र होते हैं। कठोरता जहाँ होती है वहाँ मृत्यु है। इसीलिए आज तक सुना आपने कोई भक्त मर गया? कोई भक्त मरता है? मीरा मरी, सूर मरे, तुलसी मरे, नानक मरे, तुकाराम मरे, नामदेव मरे, भक्त कभी मरते नहीं है। बोले क्यों नहीं मरते? वो तो उनके अंदर इतनी विनम्रता है। मरते तो वो है जिनमें कठोरता होती है। एक बार एक संत से किसी ने जाकर पूछा, महाराज जी जरा आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए। महात्माओं से प्राय लोग जाते हैं, पूछते हैं, महाराज कोई बात शुद्ध बता दो, कोई अनुभव सुना दो आपका कुछ जिससे हमें लाभ हो। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा, पूछने वाले से, भगत से कहा कि अच्छा बता मेरे मुंह में दांत हैं, बूढ़े महात्मा थे, बहुत बुढ़े थे और आयु के प्रभाव से उनके सारे दांत मुंह के गिर गए थे। तो उन्होंने कहा तुझे मेरे मुंह में दांत दिखते हैं? बोले महाराज दांत तो नहीं है। अच्छा ये बता मेरे मुंह में जीव है? बोले हाँ जीव तो है महाराज। तो महात्मा कहते हैं तू इसी को मेरा अनुभव समझ ले। मतलब बात समझ में आई आपको? महात्मा ने कहा कि यही तू मुझे मेरा अनुभव समझ ले। बोले अनुभव क्या? कि यही अनुभव है, दांत मुख में रहते हैं पर कठोर होते हैं तो एक एक करके टूट के मर जाते हैं। जीव मोह में रहती है, मुलायम रहती है तो वो कभी मरती नहीं है। तो जीवन में जिसमें कठोरता है माने जिसमें अकड़ है, अकड़ने वाला मुर्दा होता है, अकड़ जिसके अंदर होती है, अभिमान जिसके अंदर होता है, अहंकार जिसके अंदर होता है वो तो मरता है। परंतु जो भक्त होते हैं, जैसे मुख में जीव विनम्र होकर रहती है, मुलायम होकर रहती है, उसी तरह से जो जीवन में विनम्र बन करके रहते हैं वो कभी मरते नहीं। विनम्रता आती है भक्ति से। जो जो भक्ति आपके अंदर, प्रेम आपके अंदर बढ़ेगा, अर्थात विनम्रता जीवन में कब कब आती है? जब जब आपकी बुद्धि से राग और द्वेष का आग्रह हटेगा। विनम्रता तो स्वाभाविक आपका स्वभाव है नारा, ये आपका विनम्रता लाना नहीं है। विनम्रता तो हमारे स्वभाव में है, परंतु जो चीज हमें स्वभाव से हमें प्राप्त है, कठोर होना ये हमारा अस्वभाव है और उस अस्वभाव को हमने पकड़ लिया हुआ है। शिव जो विनम्र हैं, अत्यंत सात्विक हैं, अर्थात वही तत्व शिव है, शिव ही निज आत्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समग्र प्राणियों के हृदय में आत्म स्वरूपस्थ शिव को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जीवन शिवमय बने और शिव तत्व को पहचान कर बुद्धि सात्विक बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल करेंगे।